Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari गतपुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तं समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरि ओम् नारायण 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 कठोपनिषद के दूसरी वल्ली का पहला श्लोक कल प्रारंभ हुआ था, उसी को आगे बढ़ाते हैं। पुरमेकादश द्वारम अजस्या वक्र चेतसा अनुष्ठाय न शोचते विमुक्तश्च विमुच्यते एतद्वै तत्। ये आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है? बोले बस यही है जो इस श्लोक में बताया। हर श्लोक में ऐसा ही कहते हैं, बस यही है। तो किसी भी वस्तु की पहचान कराने के अलग अलग ढंग होते हैं, तो जिस ढंग से जिसकी समझ में आ जाए। तो कहा कि यह शरीर जो है यही माध्यम है आत्मा को पहचानने का। जैसे कोई फैक्ट्री चालू करता है, मिल चालू करता है, कोई वस्तु बनाता है और विज्ञापन न करे तो उसके बनाने का कुछ मतलब ही नहीं है, बना बना के घर में रख लो। तो भगवान ने भी सोचा कि मुझको जानेगा कौन, तो ये जो शरीर है ना, ये भगवान ने विज्ञापन बनाया है अपना। इस शरीर के माध्यम से ही हम आत्मा को पहचान सकते हैं। ये शरीर जो है कैसा है कि इसमें 11 दरवाजे हैं, ये कल बात हो ही गई, 7 ऊपर के 2 नीचे के, 1 सिर का 1 नाभि का, ये 11 दरवाजे हैं। और इसका जो मालिक है वो अजस्य और अवक्र चेतसा है। ये शरीर तो जन्मता है, मरता है, लेकिन इसका जो मालिक है वो जन्मता नहीं है, इसलिए मरता भी नहीं है। अजस्य माने जिसका जन्म नहीं होता उसका यह शरीर है। और हम कहते हैं हमारा शरीर है, और हम कौन? अगर हम अपने को अजन्मा मानते हैं तो ठीक कहते हैं, और अगर अपने को जन्म मृत्यु वाला मानते हैं और फिर इस शरीर को अपना कहते हैं तो गलत कहते हैं। तो ये आज का शरीर है, अर्थात शरीर का तो जन्म होता है और आत्मा का जन्म नहीं होता है। ये विलक्षणता आत्मा की यहां बताई। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद् यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। गीता के 13वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि इदम शरीरम, ये तो है शरीर, जिसको आप यह करके जानते हैं वो सब शरीर है। आगे तो शरीर की व्याख्या भगवान ने महाभूतान्य अहंकारो ये सब शरीर में ही गिना दिए, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप व्यापक में मत जाइए, अपने ही शरीर में ध्यान कीजिए। तो ये जो शरीर है ये इदम वाच्य है, माने यह करके इसको जाना जाता है। और जो अज्ञानी लोग हैं वो मैं करके भी जानते हैं, है तो ये यह है और जाना जाता है ये मैं करके। तो यहीं से विवेक प्रारंभ होता है। इदम शरीरम, एक तो ये शरीर है, तो शरीर किसको कहते हैं कि जो गल जाए सड़ जाए उसको शरीर बोलते हैं, शीर्यते इति शरीरम। अब अपने सामने ही नारायण ये बुढ़ा हो जाता है फिर मर जाता है, तो शरीर तो है ही, गलने सड़ने वाला तो है ही। जिनको जवानी में देखा उनको बुढ़ापे में पहचान नहीं सकते हैं। अच्छा 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 अब वही है, अरे भाई आपकी तो शक्ल बदल गई। अब भाई शक्ल तो बदलेगी, तो ये तो परिवर्तनशील है। तो इदम शरीरम और क्षेत्रम, ये क्षेत्र है, क्षेत्र माने खेत। खेत में जैसे बीज बोते हैं तो फसल उगती है, ऐसे ही इस शरीर में कर्म की फसल बोई जाती है और वो ही काटी जाती है। पहले जैसे बोआए उसको अब काट रहे हैं, और अब जैसे बोएंगे उसको आगे काटेंगे। और अभिधीयते, इसका नाम भी है, रूप तो है इसका गलने सड़ने वाला, और अभिधीयते माने इसका नाम भी है। तो नाम रूपात्मक तो यह शरीर है और यह करके जाना जाता है, और इसको जो जानता है उसमें ये सब चीजें नहीं है, वो इदम वाच्य नहीं है, वो अहम वाच्य है एक बात, वो गलने सड़ने वाला नहीं है, वो अजन्मा है दो बात, उसमें इसमें नाम रूप है उसमें नाम रूप नहीं है। तो बोले आपको नाम रूप से क्या चिढ़ है, नाम जहां देखो वहीं नाम रूप का खंडन आपको मिलेगा। तो नाम रूप से चिढ़ नहीं है, नाम रूप का तो अधिष्ठान आधार जो है यही आत्मा ही है, इसी आत्मा के ऊपर ही नाम और रूप चढ़े हुए हैं। जैसे सोने के ऊपर ही सारे जेवरों के नाम और रूप चढ़ जाते हैं, तो ये तो सोने की तरह से आत्मा चढ़ होने का क्या सवाल है। लेकिन जब सोने का विचार करते हैं तो उसमें नाम रूप है, होते नहीं है, क्योंकि वो नाम रूप कभी बन जाते हैं कभी टूट जाते हैं कभी आ जाते हैं। तो ये अजस्य का शरीर है, अजन्मा का शरीर है, और अवक्र चेतसा, इसका जो ज्ञान विज्ञान है वो कभी अवक्र नहीं होता, टेढ़ा नहीं होता है, सीधा ही रहता है। क्या मतलब? जैसे प्रकाश है, अब पुरानी थ्योरी हो गई वैसे ये, तो प्रकाश को पहले मानते थे, न्यूटन ने बताया था कि एक सीधी रेखा में प्रकाश चलता है, तो फिर हाइजेंस वगैरह इन्होंने कहा कि नहीं, सीधी रेखा में नहीं चलता है, वेव्स में चलता है, लहरों में चलता है। क्योंकि न्यूटन ने तो कहा कि सीधी रेखा में चलता है इसलिए परछाई पड़ती है, और हाइजेंस ने कहा कि नहीं, ये वेव्स में चलता है इसलिए उसको प्रतिरोध को ये पार करके ऊपर से होकर निकल जाता है, अगर ये सीधा ही चलता तो बिल्कुल ही रुक जाता। माने देखो घटना एक ही है, निष्कर्ष दो हैं। तो ये विज्ञान जो है ये सीधी रेखा में भी चलता है नारायण, और ये वेव्स में भी चलता है, लेकिन रहता विज्ञान ही है। लाइट लाइट ही रहती है, चाहे वो सीधी रेखा में चले और चाहे वो वेव्स में चले। क्या मतलब क्या हुआ कि जैसे आत्मा का प्रकाश है, तो ये जो इंद्रियां हैं ना, 11 दरवाजे जो हैं, जब इनसे जाकर टकराते हैं ये, तो जैसे लाइट को यदि आप प्रिज्म में से होकर के पास करें तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, तो वो रंग कहां से आए, वो तो लाइट में ही थे, उस प्रिज्म ने उसको तोड़ दिया बस। तो ऐसे ही ये जो पांचों ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये उसी आत्मा के प्रकाश को ये तोड़ देती हैं। आंख रूप में तोड़ देती है, कान शब्द में तोड़ देता है, पांचों ज्ञानेन्द्रियां जो है इनको इनके अवयवों में तोड़ देती हैं। लेकिन है ये प्रकाश का ही स्वरूप, प्रकाश ही इन पांच तरीके से ये मुड़ जाता है, लेकिन मुड़ करके भी फिर भी रहता प्रकाश ही है। अवक्र का मतलब यह है कि वक्र हो जाने पर भी ये अवक्र ही रहता है, इसके ज्ञान स्वरूपता में कोई अंतर नहीं आता है। आखिर रूप भी तो ज्ञान ही है, शब्द भी तो ज्ञान ही है, स्पर्श भी तो ज्ञान ही है, गंध ज्ञान है, रस ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान है। अब ये जो जितने इसके विभाग होते हैं वो सब टेढ़े मेढ़े होकर के मालूम पड़ते हैं। तो अब मान लो प्रकाश ऐसे ऐसे लहरों में चले तो क्या लाइट लाइट नहीं रहेगी? वो तो चलने का ढंग है। अब पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां तो ऐसे ही घुमाव फिराव वाले रास्ते होते हैं, शहरों में जाते हैं तो सीधे सीधे रोड पर चले जाते हैं। तो ये जो इंद्रियां हैं ये इसको वक्र बना देती हैं, वक्र जैसा बना देती हैं, लेकिन ये स्वयं वक्र नहीं होता, ये प्रकाश ही रहता है, ज्ञान स्वरूप ही रहता है। अवक्र चेतसा, अब यहां करता क्या है, ये बैठा बैठा क्या करता रहता है साथ ये शरीर में आत्मा? तो कहते हैं ये बैठा हुआ शरीर में जितने भी ये इंद्रियों के विज्ञान होते हैं ना, एक तो होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। तो ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, और ये इंद्रियां जिसमें मन बुद्धि भी शामिल है, इंद्रियां जो हैं ये उसी ज्ञान को विज्ञान में तोड़ देती हैं। तो ये विज्ञान के रूप में जब ये आत्मा के सामने आता है तो वो उनको प्रकाशित कर देता है, बस आत्मा का ये काम है। इसलिए उसके स्वरूप में कोई अंतर नहीं पड़ता है, प्रकाशन करना उसका स्वरूप है, क्रिया करना उसका स्वरूप नहीं है, क्रिया तो ये इंद्रियों के द्वारा होती है। पुरमेकादशद्वारम् अजस्यावक्रचेतसा अनुष्ठायन शोचति। अब जो इस आत्मा को जानता है, मैं जान गया कि मैं आत्मा हूं, तो आपको शोक क्यों होता है? क्योंकि अनुष्ठाय न शोचति, जो इसको अनुष्ठान करता है वो शोक नहीं करता है। तो अनुष्ठान करने का क्या मतलब हुआ? अनुष्ठान यहां वेदांत में जो अनुष्ठान है वो जो प्रतिबंधक चीजें हैं उनको छोड़ करके जब हम जानते हैं, इसलिए भाष्यकार ने लिखा यहां तम सर्व एषणा विनिर्मुक्तम सन। ये एषणाओं को जब तक नहीं छोड़ते हैं तब तक इस आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। ये तो समझदारी हो गई कि हां हम आत्मा हैं, लेकिन हमारी जो मूल प्रवृत्ति है वो मूल प्रवृत्ति तो एषणाओं के प्रति ही है। पुत्र एषणा है, वित्त एषणा है, लोकेषणा है, ये तीन एषणा कहलाती हैं। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, तुलसीदास जी ने इसका अनुवाद किया। सुत वित्त लोक ईषणा तीनी, इन करके कर चित्त न मलिनी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसका चित्त इन तीन एषणाओं से मलिन न हो रहा हो? तो बोले भाई जब सबका ही होता है तो इसमें दोष तो कुछ है ही नहीं। बोले दोष की बात नहीं है, हर चीज का एक ढंग होता है। अगर आप आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो इन एषणाओं से वो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने का मतलब भी समझ लेना चाहिए। आप बिना वित्त के नहीं रह सकते, मगर वित्त माने पैसा नहीं होता है, वित्त माने तो वस्तु होता है। अर्थशास्त्र बोलते हैं ना, अर्थ। अब आजकल चूंकि सब वस्तुएं पैसे से खरीदी जाती हैं, इसलिए वो पैसे पैसा का नाम वित्त हो गया है। वैसे वित्त माने अर्थ होता है, वस्तु। तो महात्मा लोग जो हैं, अगर वो पैसा ना भी लें, अब तो वो पैसा इसलिए ले लेते हैं कि स्वतंत्र हो जाते हैं, लेकिन अगर पैसा न भी लें तो वस्तुओं की तो कोई कमी नहीं होती है। वस्तु तो उनके पास परमात्मा कहीं ना कहीं से भेज ही देता है। भगवान ने पैसा नहीं बनाया, ये करेंसी परमात्मा की उपज नहीं है, ये तो सरकारी उपज है। ये तो विनिमय की एक प्रणाली है कि आप पैसा दो आपको वस्तु मिल जाएगी। अब बिना पैसा दिए हुए अगर वस्तु मिल जाए तो फिर पैसे की क्या जरूरत है? नारायण। तो बोले भाई जिनके पास पैसा है वो वस्तु खरीद के दे देते हैं महात्माओं को। तो इसलिए अनुष्ठान करने के लिए, वैसे वेदांत में अनुष्ठान नहीं किया जाता है, लेकिन यहां त्याग रूप अनुष्ठान ही है। अगर ये तीनों एषणाओं का त्याग कोई कर दे तो फिर कुछ और अनुष्ठान करने की जरूरत नहीं है। तो सर्व एषणा विनिर्मुक्ता सन, तब फिर अगर आत्मज्ञान होगा तो नहीं शोक होगा। देखो नारद जी महाराज जब सनत कुमार के पास गए, छांदोग्य उपनिषद की कथा है, नारद जी महाराज सनत कुमार के पास गए, उन्होंने कहा प्रभु मुझे आप शोक के पल्ली पार पहुंचा दीजिए। बोले भाई आपको और शोक, आप ब्रह्मा जी के पुत्र, भगवान का हमेशा गुणगान करते रहते हैं और सब शास्त्र आपने पढ़े हैं, आपको किस बात की कमी है जो आपको शोक हो रहा है? बोले शोक हो रहा है इसको मैं नकार कैसे दूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि जो आत्मवेत्ता होते हैं उनको शोक नहीं होता है। तरत शोकम आत्मवेत्त, आत्मवेत्ता जो होते हैं वो शोक नहीं करते हैं। और मुझे शोक हो रहा है इसका अर्थ है कि मैं आत्मवेत्ता नहीं हूं, तो आप मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। तो सनत कुमारों ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 आप तो ज्ञानी हो, आपको हम क्या दें। जब आप स्वयं अज्ञान स्वीकार कर रहे हो तो महाराज श्री कहते हैं कि गुरुजी भी फिर तन के बैठ जाते हैं कि अच्छा तुम अपने में अज्ञानीपने का आरोप करते हो तो तुम आत्मा, लेकिन अपने को अज्ञानी मान रहे हो, तो मैं भी आत्मा हूं। अब मैं अपने में ज्ञानीपने का आरोप करके और तब मैं फिर तुमको बताता हूं। अगर गुरु की दृष्टि में कोई अज्ञानी हो तो वो नारायण गुरु नहीं है। गुरु की दृष्टि में तो सब ज्ञान स्वरूप आत्मा है। श्री उड़िया बाबा जी महाराज तो कहते थे कि ज्ञानी आज तक कोई हुआ ही नहीं क्योंकि ज्ञानी तो एक अभिमान है, जैसे कोई धन का अभिमान करके धनी कहलाता है, ऐसे ही ज्ञान का अभिमानी को ज्ञानी बोलते हैं। तो वो तो एक क्षण के लिए अभिमान उदय होता है जब ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होता है, और फिर उसी क्षण वो नष्ट हो जाती है। इसलिए ज्ञानी तो कोई होता ही नहीं है, ज्ञान स्वरूप सब आत्मा है नारायण। तो यदि ये आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो इनको ऐषणाओं को त्यागना पड़ेगा। त्यागने का मतलब इनसे उदासीन होना पड़ेगा। बोले संसार का काम तो नहीं चल सकता था, तो फिर संसार ही चलाओ ना आत्मज्ञान की जरूरत क्या है? ये तो जैसे आत्मज्ञान की जरूरत हो वो कहेगा कि संसार चले या ना चले, मुझे तो आत्मज्ञान चाहिए। इसीलिए ये जब संसार के सब कामों से निबट जाए ना, तब यदि जिज्ञासा हो तो जल्दी पूरी हो सकती है। ये चौथा आश्रम, चौथा पन इसीलिए रखा है कि इसमें यदि जिज्ञासा हो जाए, यदि इम्पोर्टेंट है। जिज्ञासा होती नहीं है, लोग रिटायर भी हो जाते हैं सब, फिर भी वहीं मरते कुटते रहते हैं, उसी वातावरण में, जिस वातावरण में सारी जिंदगी बिताई, उसको छोड़ना ही नहीं चाहते नारायण। तब उनसे ये आशा करेगा क्या कोई कि वो तीनों ऐषणाओं का त्याग कर देंगे? तो जिज्ञासा नारायण बड़ी मुश्किल से होती है, लेकिन यदि हो जाए तो फिर और सब काम धंधे कुछ करने हैं नहीं, तो फटाफट ज्ञान हो सकता है। और ये तो मैंने बड़ी उम्र की बात तो इसलिए कह दी, लेकिन छोटी उम्र में भी जो पुराने जन्मों के अभ्यासी हैं, जो वैराग्य जिनके जन्म में है, उनको युवावस्था ही में ज्ञान हो जाता है। तो अनुष्ठाय न शोचति, यह अनुष्ठाय शब्द जानबूझ के इसीलिए दिया है, वरना तो लिख देते कि अपने को जान लो तुम शोक से मुक्त हो जाओगे। तो ये जानना हमारा अधूरा है, अनुष्ठान करना पड़ता है। अनुष्ठान माने त्याग का अनुष्ठान करना पड़ता है। तो सनत कुमार जी ने कहा कि तुम पहले ये बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है। नारद जी ने कहा मैंने ऋग्वेद पढ़ा, मैंने यजुर्वेद पढ़ा, मैंने सब बता दिए, वहां 15-16 शास्त्रों के नाम गिना दिए, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा। तो सनत कुमार ने एक शब्द में उनका सारा अभिमान खत्म कर दिया। बोले ये क्या पढ़ा है तुमने, सब शब्द पढ़े हैं और क्या पढ़ा है? शब्द के पढ़ने वाले को तो पढ़ा ही नहीं, ये शास्त्र जो है ये तो शब्द मात्र है नारायण। यही शास्त्र जब गुरु मुख से निकलता है ना, तब वो काम करता है। और अपने आप चाहे जितना शास्त्र पढ़ लो उससे ज्ञान नहीं होता है। महाराष्ट्र एक उदाहरण देते थे कि ये जो गोली होती है, देसी छर्रे जो होते हैं, तो वो छर्रा लेके आप ऐसे फेंको किसी को मारो तो ज्यादा से ज्यादा उसको वैसे ही मामूली चोट लग जाएगी, और उसी को उसमें पिस्तौल में रख के, बंदूक में रख के मारो तो हो सकता है मर भी जाए। नारायण, तो ये जो गुरुमुख से शास्त्र निकलता है ये तो है पिस्तौल की गोली, बंदूक की गोली, और ये अपने आप जो शास्त्र पढ़ा जाता है ये तो छर्रा खरीद लाए वहां से और मार रहे नारायण धवादब, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, हमने ये पढ़ लिया, तो वो सिवाय अभिमान उत्पन्न करने के कुछ नहीं करता। तो सनत कुमार जी ने सबसे पहले उनका अभिमान नष्ट किया, बोले क्या है ये सब शास्त्र, अब इतना सब शास्त्र का झंझट छोड़ो, एक शब्द पकड़ लो, शब्द ब्रह्म है, ओम इति ब्रह्म इत्युपासित, बस ये ओम, इसमें संपूर्ण शास्त्र भरा हुआ है। आखिर शास्त्र ये निकलता कहां से है, इसका उद्गम कहां है, शास्त्र योनित्वात् सूत्र ही है ब्रह्म सूत्र में, तो शास्त्र की योनि माने शास्त्र कहां से निकलता है, तो उसी परमात्मा में से निकलता है जो ज्ञान स्वरूप है, उसी में से ये ज्ञान के बिंदु, ज्ञान के कण शब्द शास्त्र के रूप में निकलते हैं। तो ओंकार की उपासना अनुष्ठान के द्वारा जो लोग बुद्धि को आत्मा में बिठा लेते हैं, फिर उनकी बुद्धि में शास्त्र अपने आप स्फुरित होने लगता है। संस्कृत में स्फुरित हो ये जरूरी नहीं है, आपकी अपनी बोली में ही स्फुरित होगा, भगवान की भाषा तो सब है, संस्कृत भी भगवान की भाषा है, अंग्रेजी भी भगवान की भाषा है, और अवधी और बिहारी और जो कुछ भी है ये भी सब भगवान की भाषा है, बंगाली मराठी, जिस भाषा जो भाषा आपकी बुद्धि जानती है उसी भाषा में वो ज्ञान स्फुरित होने लगेगा। नारायण, तो अनुष्ठाय न शोचति, इसलिए वो फर्क मतलब जो असर नहीं हो रहा है ना हम लोगों पे, इतने बरस से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, लेकिन जब शोक का मौका आता है तो फौरन शोक करने लगते हैं, परंतु यहां तो कह रहे हैं न शोचति, नहीं सोच, ध्यात्वा न शोचति, बोले क्यों कि तद विज्ञानात् अभय प्राप्ते शोकावसराभावात् कुतो भयेक्षा, जब विज्ञान हो गया आत्मा का तो अभय की प्राप्ति हो गई, अब शोक के लिए अवसर ही कहां है, फिर भय किससे होगा ना, इसलिए शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है और शोक करता भी नहीं है, ये अभिप्राय है। फिर कहते हैं विमुक्तस्य विमुच्यते, तो एक तो ये दृष्ट फल है आत्मज्ञान का, दृष्ट फल माने इसी जीवन में जो आपको फल मिल जाता है वो क्या फल है कि न शोचति, शोक नहीं करेंगे, और शोक नहीं करेंगे तो हर्षित भी नहीं होंगे, न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, चारों चारों चीजें आ गई इसमें, और शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय। फिर शुभ और अशुभ यही सर्वत्याग ऐष्णा त्याग अपने आप हो गया, तो सर्वत्याग करके शुभाशुभ परित्याग करके यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, अथवा तत्वज्ञान के को प्राप्त करके यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, पहले ईष्णा त्याग कर दो या पीछे ईष्णा त्याग कर दो। शंकराचार्य भगवान तो कहते हैं संन्यास श्रवणम कुर्यात्, पहले संन्यास करो फिर वेदांत का श्रवण करो, संन्यास करके और उपनिषद का श्रवण करना चाहिए। अच्छा मान लो इसका मतलब क्या, जो संन्यासी नहीं है उनको आप उपनिषद का श्रवण नहीं कराएंगे? बोले अगर बिना संन्यास के उपनिषद का श्रवण करते हो तो आपको ज्ञान हो करके रुक जाएगा,